याद बाबा रह रह के आए। देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। याद न आए क्यों जिनसे प्राण पाए, याद न आए क्यों जिनसे प्राण पाए। देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। पहले भी पालना दी आपने कमाल किया, व्यक्त होके सेवा और भी विशाल की। आपकी याद बाबा। आप जो भी कहते बाबा करके दिखाए, आप जो भी कहते बाबा करके दिखाए। देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। आपकी याद बाबा रह रह के आए।
ओम शांति। आज हमारा बहुत परम सौभाग्य है ना? आदरणीय हमारे वरिष्ठ भ्राता मोहन सिंगल भाई जी हमारे उपस्थित है। एक हाथ की ताली बजा के भाई साहब का हम वेलकम करेंगे। भाई जी के बारे में क्या कहे, मेन तो मम्मा और बाबा की पालना लिए हुए है। आपका नाम ही मोहन अर्थात मोहित करने वाला, लेकिन आपके कर्म ऐसे हैं कि आप स्वयं से नहीं लेकिन परमात्मा के गुण ज्ञान से आत्माओं को क्या करते हैं, मोहित करने की प्रेरणा देते हैं। तो ऐसे अनुभवी भ्राता जी हमारे बीच है। भाई जी ने लखनऊ महाविद्यालय से उच्च शिक्षा पदवी प्राप्त की, उस तत्पश्चात उन्होंने 1962 से ONGC में वरिष्ठ वैज्ञानिक के रूप पद से उन्होंने वहाँ पे 28 वर्षों तक बिहार, आसाम, गुजरात ऐसे भिन्न भिन्न स्टेट में अपना ये सर्विस दी, और उसी समय उन्हें बाबा का भी ज्ञान प्राप्त हुआ और अपने इस लौकिक सेवा के साथ साथ उन्होंने इस ईश्वरीय सेवा में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा कि वहाँ की जो सेवाओं का विस्तार है, तो भाई जी के सहयोग से काफ़ी ईश्वरीय सेवा में सहयोग मिला। और उसके बाद भाई साहब ने 28 वर्ष वहाँ करने के बाद पूरा अपना जीवन ब्रह्मा कुमारीज इस संस्था में समर्पित कर दिया पूरी रीति से। और खास इनकी विशेषता ये रही कि पर्यावरण जागरूकता, पर्यावरण दूषित तो है ही लेकिन साथ साथ आत्माओं के अंदर जो विकारों के कारण जो दूषित हो गए, मन से दूषित हो गए, तो इनका समन्वय कि कैसे पर्यावरण को भी सुसज्जता शुद्धता लानी है और साथ साथ हमारे अंदर भी वो पवित्रता कैसे लानी है, इनका समन्वय, इसमें आपका काफी सहयोग रहा। और उसी कारण आपको भारत सरकार की तरफ से पर्यावरण श्री के अवार्ड से भी नवाजा गया, और सिर्फ भारत में ही नहीं देश तथा विदेश वहां से भी आपको भिन्न भिन्न अवार्डों से, जैसे USA, UK से भी आपको काफी बड़े बड़े अवार्ड प्रदान हुए हैं। आपने भारत तथा विदेश में 1000 से भी अधिक आपके प्रवचन हो चुके, जिससे आत्माओं तक आपने पर्यावरण जागरूकता, आध्यात्मिक सशक्तिकरण, मूल्यनिष्ठ जीवन कैसे जिए इसके ऊपर आपने काफी प्रकाश डाले हैं। आपके कई किताबें भी प्रकाशित हुए हैं। तो ऐसे महान अनुभवी, जहाँ हम बैठे हैं पांडव भवन, तो यहाँ आज का हमारा टॉपिक ही क्या है, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। तो यहाँ जहाँ पे भी हम जाते हैं वो अनुभव तो कर ही रहे हैं, लेकिन आज हम भाई जी से अनुरोध करेंगे कि हम जहाँ जाएंगे वहाँ पे, वो माया नगरी है मुंबई, तो वहाँ पे भी ये स्थिति हमारी कायम कैसे रहे, हम भाई जी से वो लाभ लेंगे। आदरणीय मोहन भाई जी।
ओम शांति। ये तीन शब्द सभी ब्राह्मण परिवार के लिए बहुत ही पॉपुलर हैं, उनकी स्मृति में भी हैं और पुरुषार्थ में भी रहते हैं कि ये तीन शब्दों के ऊपर हमारा यथार्थ पुरुषार्थ चलता रहे। कौन से तीन शब्द? निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी। सुनते भी हम सब लोग भी सुनते हैं, लेकिन मेरे लिए ये शब्द कुछ औरों की तुलना में शायद कुछ विशेष महत्व रखते होंगे। क्यों? क्योंकि ये तीन शब्द हमने डायरेक्ट ब्रह्मा बाबा के मुख से सुने और अंतिम दिन भी 18 जनवरी 1969 हमारा ये सौभाग्य था कि हम यहीं मधुबन में ही आ गए थे और बाबा की रात्रि क्लास भी सुनी और ये तीन शब्द भी बाबा के मुख से सुने और इस कारण से ये काफी हद तक हमारे दिमाग में जैसे छिपे हुए हैं। तो हम सभी जानते हैं कि ये तीन शब्द हमारे किन तीन एक्टिविटीज से कनेक्टेड है। हमारी कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं? मंशा वाचा करना, बिल्कुल ठीक। तो मंशा से क्या कनेक्टेड है? निराकार। और वाचा से निरअहंकार और कर्मणा से निर्विकार। तो ये तीनों शब्द जो है आज की मुरली में भी बाबा ने किसी न किसी रीति से इन तीन शब्दों पर विशेष बल दिया है। आज की मुरली तो सबने सुनी होगी। तो मुरली का सोल क्या था? मुख्य क्या मुरली की जो हेडिंग थी क्या थी? बहुत मीठा बनना है। तो मीठे का कनेक्शन किससे है? निरहंकारी वाचा से, क्योंकि बोलते तो मुख से ही है और अहंकार का प्रदर्शन भी मुख से होता है, मीठेपन का भी प्रदर्शन मुख से होता है। इसीलिए बहुत मीठा बनना है। हाँ, और लौकिक में भी कह देते हैं भाई इसकी जवान बहुत मीठी है या कड़वी है, जैसा भी स्थिति होती है। तो जवान को भी इंग्लिश में भी बोलते हैं, हाँ, क्या टंग के लिए क्या बोलते हैं? टंग, यस राइट, टंग हैज गॉट नो बोन बट इट ब्रेक मैनी बोन्स। टंग में जीभ में जवान हड्डी नहीं होती है, फ्लेक्सिबल है ना जीभ, तो जीभ में हड्डी नहीं होती है लेकिन बहुतों की हड्डियां तोड़ देती है। मुख से कड़ा शब्द निकल गया और किसी का अपमान हो गया हमारे अहंकार वश या कोई बात हो गई तो उसको बहुत समय तक उसकी फीलिंग रहेगी, व्यर्थ संकल्प विकल्प चलते रहेंगे, बदला लेने की उसमें भावना जागृत हो सकती है। तो इसीलिए मीठा बाबा ने शुरुआत ही उससे ही की, ये एक शब्द से। और फिर और क्या था मुरली का जो मुख्य महावाक्य होता है, क्या था? कर्मेंद्रियों की शीतलता के ऊपर बाबा ने काफी बोला था कि हमारे बस फाइनल स्टेज की निशानी ही है कर्मेंद्रियों में शीतलता। कर्मेंद्रियां 100% जैसे हमारे नियंत्रण में, कंट्रोल में होंगे। आंख नाक कान मुंह ये सब कर्मेंद्रियां ही हैं। तो इसीलिए ये पूरा नियंत्रण में होना ये हमारी संपूर्णता की निशानी है। तो ये किस एक्टिविटी से कनेक्टेड है? कर्मणा से, क्योंकि अल्टीमेटली मनसा वाचा कर्मणा वो ही होता है। और फिर तीसरी क्या रह गया? मंशा। हम लोग भी कुछ उल्टा चल रहे हैं, जैसे बाबा भी कई बार उल्टा चलता है ना। बाबा कहता है फर्स्ट फ्लोर परम धाम, सेकंड फ्लोर सूक्ष्म वतन, और ये थर्ड फ्लोर, और दुनिया वाले नीचे से ऊपर चलते हैं। तो इसीलिए इसका तात्पर्य लास्ट में बाबा ने वरदान में ही क्या बोला फिर मंशा के ऊपर, उसमें कर्मणा जो है, और जो मतलब हम लोग नॉर्मल केस में कहते हैं भाई हम समर्पण होना चाहते हैं, तो संपूर्ण समर्पण की परिभाषा बाबा ने क्या बताई, कंप्लीट रीति से बॉडी कॉन्शियस ना रहे, सोल कॉन्शियस हो जाए। तो वो मन मना भाव मंशा की बात है। तो तीनों ही बात आज बाबा ने मुरली में मंशा वाचा कर्मणा और निराकारी निरंकारी निर्विकारी इसके ऊपर आज बाबा ने मुरली में काफी बोला है। उसमें भी बीच बीच में अगर और गौर से पढ़ेंगे मुरली को तो कई जगह इस बात की और भी स्पष्टता देखने को मिलेगी। तो इसीलिए ये तीन जो है ना शब्द जो है हमारे पूरे ज्ञान का सार है, पूरा ज्ञान। तो क्योंकि सारा ज्ञान ही हमारा मंशा वाचा कर्मणा में आ जाता है और इसका सार इसमें है। तो इस सार को वास्तव में गहराई में जाने की आवश्यकता है बीच बीच में, कि कैसे हम लोग निराकारी निरहंकारी निर्विकारी स्थिति को प्राप्त करते हुए अपनी संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को पहुंच जाए। और कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने के लिए और क्या बात की आवश्यकता है, जो देखें तो बाबा कहता है एक तो बस हमारी स्थिति ऐसी हो जो सब देखते हुए भी हम बस साक्षी दृष्टा हो करके हमारे ऊपर उसका जो प्रभाव ना पड़े, साक्षी। क्योंकि जब भी कोई प्रभाव पड़ता है उसके पीछे बात रहस्य यही है कि हम जितना साक्षी होना चाहें चाहिए वो नहीं होते। तो जब साक्षी दृष्टा बोलते हैं, और दृष्टि की बात बाबा तो शुरू से ही बहुत इम्पोर्टेंस देता है दृष्टि, तो साक्षी दृष्टा जब बोलते हैं तो दृष्टा क्या है, दृष्टा ये आत्मा है और दृष्टि ये आंख है। आंख के द्वारा दृष्टि के द्वारा ये दृष्टा देख रहा है। तो ये एक तो स्थिति अगर रहती है हमारी तो हम साक्षी होकर के संसार का सारा खेल सुबह से शाम तक सब एक्टिविटीज को हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, और ये हमारी निराकारी स्थिति को बनाने में बहुत बहुत मदद कर सकता है। तो दृष्टा ये आत्मा और दृष्टि ये क्या आंख। तीसरी चीज क्या है, हम क्या देखते हैं आंख से, दृश्य देखते हैं। तो दृष्टा दृष्टि और ये जो भी संसार में देखते हैं ये सब दृश्य। बस मान लो हम व्हीकल में जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, बस हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, दृश्य भी एक के बाद एक आके पीछे छूटते चले जा रहे हैं। तो ये दृश्य जो है उसकी यही अनुभूति रहे, मैं जो कुछ भी देख रही हूँ आत्मा, ये दृश्य रहने वाला नहीं है। कोई भी दृश्य रहने वाला होता है क्या? आया कुछ सेकंड में, मिनटों में, घंटों में दृश्य चला गया। तो इसीलिए ये जो कुछ भी एक्टिविटी हम करते हैं, देखते हैं, दूसरों की देखते हैं, वो दृश्य रहने वाले नहीं। तो इसीलिए वो दृश्यों को, ये तीसरी चीज है साक्षी दृष्टा में जो मदद करती है कि ये दृश्य कोई भी रहने वाला नहीं। और कोई भी दृश्य अगर कई बार रहने वाला अगर हो जाता है तो वो फिर जीवन में दुख और अशांति का ही मुख्य कारण बन जाता है। क्योंकि अक्सर करके हम पुरानी उन बातों को नहीं भूल पाते जो कुछ नेगेटिव असर हमारे ऊपर छोड़ के गए हैं। हमारे कृषि निकट प्रिय बंधु के बीमारी हो, मृत्यु हो, कोई ऐसी घटना हो, तो वो बात को हम अक्सर भूल नहीं पाते। जबकि कहा जाता है ये कि जब भी बच्चा पैदा होता है, मनुष्य पैदा होता है, तो उसमें दो शक्तियां विशेष होती हैं। कौन सी शक्तियां? एक याद रखने की शक्ति, एक भूलने की शक्ति। ये दो शक्तियां हर एक में होती हैं। लेकिन ट्रेजेडी क्या है लाइफ की कि जो बात हम याद रखना चाहते हैं वो तो भूल जाते हैं, और जो बात भूल जानी चाहिए वो बरसों तक याद रहती है। हम सबका अनुभव है। तो किसी के प्रति कोई ऐसी दुर्भावना की बात हो या जो नहीं रहनी चाहिए वो तो बरसों तक याद रहती है, और जो बात भूल जानी चाहिए वो याद रहती है, और जो याद रहनी चाहिए वो अक्सर करके भूल जाते हैं। कई काम होते हैं, करने होते हैं, घर से भी जब चलते हैं भाई लोग, भाई ऑफिस से आप आना तो ये चीज ले आना या कुछ, ये आते हैं अक्सर करके ऑफिस के कार्यों में वो बात भूल जाती है। तो ये दृष्टा एक बात हुई, दृष्टि दूसरी बात हुई, और दृश्य तीसरी बात। चौथी बात क्या हुई? दृष्टिकोण। ये सब देखिए आंख से ही कनेक्टेड है। जो बाबा दृष्टि की बात बोलता है तो ये सब बातें जो आज भी बाबा का टॉपिक है, तो दृष्टिकोण पर हमारा सब कुछ निर्भर करता है। एक ही बात होती है, एक ही घटना होती है, एक व्यक्ति के लिए वो बहुत पॉजिटिव दृष्टिकोण होता है उस व्यक्ति का, तो वो उसमें अच्छा ही देखता है, और दूसरे का जिसका नेगेटिव दृष्टिकोण होता है वो उसमें अच्छा ही नहीं देख पाता। कहते हैं कि एक बार कथाओं में आता है भक्ति मार्ग की, कि श्री कृष्ण जी ने ना दुर्योधन को और दूसरा कौन था पांडवों में मुख्य, नहीं जो सबसे बड़ा कौन था, युधिष्ठर। तो दुर्योधन और युधिष्ठर को बुलाया, उन्हें बोला आप संसार में जाओ, और युधिष्ठर को बोला आप एक सबसे खराब व्यक्ति को पकड़ के लाना, मतलब पकड़ के लाना माने मेरे पास लाना, और दुर्योधन को बोला आप सबसे अच्छे व्यक्ति को जो आप देखो सबको और जो सबसे अच्छा लगे उसको लेकर के आना। दोनों गए संसार में और दोनों खाली हाथ लौट आए। बहुत देर तक उन्होंने देखा तो पूछा कि अरे खाली हाथ कैसे लौट गए, इतने बड़े संसार में, करोड़ों के संसार में आपको एक आदमी भी नहीं मिला। तो दोनों ने कहा कि नहीं। हाँ, युधिष्ठिर ने कहा मुझे तो सभी आदमी बहुत बहुत अच्छे लग रहे थे, मैंने बहुत कोशिश करी, खराब आदमी दिखे कोई खराब ही नहीं दिखा, क्योंकि उसका अपना दृष्टिकोण पॉजिटिव था। तो उसे सब में पॉजिटिव पॉजिटिव ही, तो हमारे अपने दृष्टिकोण पर सारा संसार की घटनाएं निर्भर करती हैं। और दुर्योधन में इसके विपरीत था, उसने सब में देखा तो उसे सारे खराबी व्यक्ति नजर आए, अच्छा ही कोई नजर नहीं आया, क्योंकि उसका अपना दृष्टिकोण ही निगेटिव था। तो इसीलिए आज की भी जो बात है, टॉपिक है, उसके अंदर हमारा ये दृष्टिकोण भी बहुत मायने रखता है। तो चार चीजें याद हो गई, कौन कौन सी? दृष्टा, दृष्टि, दृश्य, दृष्टिकोण। पांचवी एक और है, क्या होगी पांचवी? पांचवा जो है ना, वो है जब आदमी चला जाता है, इतिहास लिखा जाता है तो दृष्टांत लिखे जाते हैं। तो पांचवी चीज है दृष्टांत, और वो दृष्टांत वो ही लिखे जाते हैं जैसा व्यक्ति जीवन में कार्य करके गया है। अच्छा कार्य करके गया है उसके बड़े अच्छे अच्छे दृष्टांत लिखे जाते हैं, खराब कार्य करके गया तो दृष्टांत खराब। तो बात यह है कि हम एक तो जीवन में ये साक्षी दृष्टा होके चलेंगे, तो ये पांच बातें हैं सदैव हमारी बुद्धि में रहें, तो क्या होगा जीवन में, कभी भी नेगेटिविटी भी नहीं होगी। और जो बाबा चाहता है निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी स्थिति, वो जीवन में सदा कोई भी देखेंगे। अब देह को देखा, अब दो स्थिति हो सकती हैं, या तो निराकारी देही अभिमानी दृष्टिकोण से देखें, या देह की दृष्टि से उस व्यक्ति को देखें जैसा व्यक्ति है। तो दृष्टिकोण भी हमारा महत्व तो रखता ही है, लेकिन निराकारी जो बाबा कहते हैं हरेक को आत्मा रूप में देखो, हरेक को भ्रकुटी के में देखो, तो उस रीति से अगर देखना चाहते हैं निराकारी स्थिति में है, तो वो निराकारी स्थिति में देखने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? जो बाबा ने कहा कि जो भ्रकुटी के बीच में उस आत्मा को, देह को न देखे, और देही को सदा देखते रहे। तो ये निराकारी, ये पूरा ज्ञान का सार है अगर देखा जाए, निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी। तो निराकारी तो मन अंदर की बात है, मन के ऊपर ही सारा खेल ही हमारा। भारतीय संस्कृति ने भी क्या कहा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। निराकारी स्थिति पूरा हमारा मन के संकल्पों पर ही निर्भर करती है। मन जीते जगत जीत, माया जीते जगत जीत, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन के ऊपर ही भारतीय संस्कृति पूरी की पूरी निर्भर है। इसीलिए मन को अगर हम यथार्थ जैसा बाबा चाहता है संकल्प हमारे वैसे अगर हो जाएंगे, तो उसके आधार पर ही जीवन में हम निराकारी स्थिति होगी मन की। और मन जैसा चलता रहेगा हम सब जानते हैं, मन में पहले संकल्प आते हैं, फिर वाणी में आते हैं, फिर कर्मणा में आते हैं। एक साधारण सी बात है, मन वाणी और कर्म। तो अब हम ये हमारा हरेक पुरुषार्थ उस रीति से होना चाहिए कि हमें अल्टीमेटली कर्मातीत बनना है, लास्ट में कर्मातीत। मम्मा की एक बात सुनाते हैं, अभी लास्ट मंथ होके गया, बहुत कम मतलब लोगों को ये मालूम होगा कि मम्मा ने जब शरीर छोड़ा तो शरीर तो यहीं छोड़ा, मामा सूक्ष्म वतन में गई मामा की आत्मा, तो वहां पर अव्यक्त बाप दादा थे शिव बाबा और सूक्ष्म वतन वासी ब्रह्मा बाबा, क्योंकि साकार ब्रह्मा तो यहाँ हम सबके बीच में थे। और जब मामा ऊपर गई तो मामा का शरीर हिस्ट्री हॉल में लाया गया, बाबा भी योग कर रहे थे, सब ब्राह्मण वत्स भी जितने यहाँ थे सब योग कर रहे थे। और पहले यही कंसेप्ट था, हम सब लोगों को इकट्ठा ही जाना है, बाबा मामा, और अभी मामा कैसे जा सकती है, नहीं जा सकते। तो बाबा भी कह रहे थे अच्छा मामा का आह्वान करो फिर से, मामा ऐसे जा नहीं सकती हा? और क्योंकि तब ज्ञान ही उस लेवल का ही था, तो सब योग कर रहे थे और मामा का जैसे वापसी आवाहन कर रहे थे। तो मामा जब सूक्ष्म वतन में पहुंचे तो मामा से पूछा बाबा ने, बाप दादा ने, सूक्ष्म वतन वासी ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा ने कि मामा आप कर्मातीत स्थिति का अनुभव करके आई हो कि नहीं? बाबा मैंने तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव नहीं किया। कर्मातीत स्थिति की एक परिभाषा ये भी है, कर्म करते करते कर्म से एकदम न्यारा, डिटैच रहना। जैसे ब्रह्मा बाबा भी, हम काफी ब्रह्मा बाबा के साथ रहे, 1962 में ज्ञान में आए और 69 तक अनेक बार, 12-15 बार तो कम से कम मिलना हुआ ही होगा ब्रह्मा बाबा से, क्योंकि बाबा तो पहले बाहर भी जाते थे, कानपुर भी गए तो मैं तो कानपुर में भी बाबा से मिला, दिल्ली आते थे तो दिल्ली में भी 2 बार बाबा से मिले। तो इस रीति से बाबा चक्कर लगाते थे तो वहाँ पर बच्चे लोग भी पहुँच जाते थे और बाबा से मुरली भी सुनते थे और बाबा से मिलना भी हो जाता था। मधुबन आना हो तो प्लान बनाना पड़े, वहां तो चाहे जितने दिन भी रह लो। तो उस रीति से बाबा जाते थे और सब। तो मामा जब ऊपर पहुंचे तो फिर मामा ने कहा, बाबा ने कहा मामा आपने कर्मातीत स्थिति का अनुभव नहीं किया तो अभी परम धाम तो आप जा नहीं सकते, क्योंकि आत्मा शरीर छोड़ के जब आती है तो थोड़ा परम धाम टच करेगी। परम धाम से जिस स्थिति में आत्मा अत्यधिक पवित्रता की उच्चतम स्टेज में आत्मा परम धाम में रहती है अपनी सीट पर, वहां से जब पार्ट बजाने आती है, हम सब जानते हैं सतयुग में पार्ट बजाने आई, सतयुग के बाद और जन्म लेती गई त्रेता युग आदि आदि, तो भले कलाएं कम होती गई लेकिन वो आत्मा जो है सतयुग से लेकर के जब परम धाम पहुंची तो अपनी उसी स्टेज में ही अपनी सीट पर बैठ सकती है जिस स्टेज में उसने अपनी सीट छोड़ी होगी। बाबा ने ये कई बार बताया है, परम धाम से अपनी हाईएस्ट स्टेज में होती है आत्मा परम धाम में पवित्रता की, और वो छोड़ के आती है। तो बाबा ने कहा कि मामा आपने कर्मातीत स्थिति का अनुभव नहीं किया तो जाओ, अभी आपका शरीर नीचे हिस्ट्री हॉल में रखा है, सब आपका आह्वान भी कर रहे हैं, तो आप जाओ अपने शरीर में प्रवेश करके और कर्मातीत स्थिति का अनुभव करके आओ, फिर उसके बाद सूक्ष्म बतना हो। क्योंकि जब तक कर्मातीत स्थिति का अनुभव नहीं किया है तब तक आत्मा परम धाम भी नहीं जा सकती। तो बाबा ने ममा को नीचे भेजा, ममा नीचे आई, काफी समय तक ममा नीचे रही, बहुत समय तक। और ममा नीचे रही और काफी समय के बाद जब ममा ऊपर गई तो बाबा ने कहा, हाँ बच्ची, कर्मातीत स्थिति का अनुभव करके आई? तो ममा ने कहा कि नहीं बाबा, मैं तो नहीं कर सकी। क्यों बच्ची, तुम्हें तो भेजा ही उसी के लिए था कि बाबा मैं नीचे तो गई और मैंने बहुत प्रयास किया कि मैं अपने शरीर में प्रवेश कर सकूं, लेकिन मैं प्रवेश ही नहीं कर सकी शरीर में। क्यों? क्योंकि शरीर तो ठंडा हो गया था, उसमें कोई चुरपुर नहीं हुई, कोई जीवन नहीं आया। तो बहुत प्रयास के बावजूद भी जब मैं प्रवेश नहीं कर सकी तो फिर मैं आपके पास यहाँ सूक्ष्म वतन में वापस आ गई। तो बाबा ने कहा कि बच्ची देखो, चूंकि कर्मातीत स्थिति का अनुभव तुमने नहीं किया है इसलिए परम धाम तो जा नहीं सकती। अपनी सीट पर सभी आत्माएं तभी जाएंगी, हर एक की कर्मातीत अवस्था भी अपनी अपनी है, तो तुम भी तब कर्मातीत अवस्था को जा सकोगी जब कर्मातीत अवस्था का अनुभव करके परम धाम तब जा सकोगी, अपनी सीट पर बैठ सकोगी जब कर्मातीत अवस्था का अनुभव किया होगा तुमने शरीर में। क्योंकि कर्मातीत अवस्था का अनुभव तो शरीर में रह के ही, कर्मों से अतीत होते हुए, न्यारे होते हुए कर्म करना तभी कर सकते हैं। तो इसलिए अब तुम जाओ, नया शरीर लो, तुम्हें लेना है, नए परिवार में जाना है, वहां पर जाके फिर से पुरुषार्थ करो। और तब जब पुरुषार्थ फिर से करोगी, नया शरीर, फिर उस शरीर में कर्मातीत जब बन जाओगी और तब शरीर छोड़ के जब आओगी तो फिर परम धाम जा सकोगे। ये बात सब बच्चों को बताना कि हर एक बच्चे को जो भी ये शरीर मिला हुआ है संगम योगी, ये इसमें रह के ही हर एक को संकल्प रखना है कि मुझे कर्मातीत बनना है। ऐसा ना हो कि यहाँ पर मेरा शरीर बीमार है, कैसे बनेंगे, इससे अच्छा तो नए शरीर ले लें, यहाँ पर धन की कमी है, यहाँ मेरा मन बड़ा चंचल है, मन स्थिर नहीं है। तो कुछ ना कुछ बात हर बच्चे के साथ कुछ ना कुछ कमी की उसे महसूसता होती है, जिससे उसके सम्मुख पेपर उस रूप में ही आए। तो इसलिए उस रूप में पेपर आता है तो तब वो पुरुषार्थ में भी तेजी आती है उसके। इसलिए बाबा ने ममा को भेज दिया। और देखो, ममा को अब गए हुए भी कितने साल हो गए, 60 वर्ष से तो ज्यादा ही हो गए, 61 हो गए। तो इसीलिए अगर हमने कभी भी किसी हालत में ये संकल्प हमें नहीं आना चाहिए, चाहे शरीर बीमार हो, चाहे धन की कमी हो, चाहे परिवार के अंदर बहुत हलचल हो, ना परिवार वाले आते हो, नहीं, हमें ये मुझे इसी शरीर में ही कर्मातीत बनना है, ये संकल्प की दृढ़ता हम हर बच्चे में होनी चाहिए। बीमार भी हो, बीमार होते होते भी पुरुषार्थ तो होगा ना, मंशा से भी पुरुषार्थ होगा, जितना भी पुरुषार्थ हो, लेकिन शरीर में आत्मा है तभी तो पुरुषार्थ होगा। तो इस कारण से ये अवस्था ये मम्मा का अंतिम समय का ये था, अंतिम दिन का। इसी तरह मुझे एक ये सौभाग्य मिला कि अंतिम दिन, हाँ भले हम जो है उस समय पोस्टेड थे इंजीनियरिंग पास करने के बाद धनबाद, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद है, वहाँ से पास किया था जो भी आईआईटी है, फिर ONGC ज्वाइन किया और बाबा की ही प्रेरणा से ONGC में आसाम में गए और वहाँ पर बाबा ने ही सेवा कराई। और उसके बाद अंतिम दिन हम, कोई हमारा विचार नहीं था यहाँ आने का मधुबन में, लेकिन अंतिम दिन बाबा ने ही जैसे प्रेरणा दी और बस जाना तो था हमें देहरादून हेडक्वार्टर ONGC के। अब बाबा को लिखा तो बाबा ने कहा बच्चे पहले यहाँ मधुबन आओ और तुरंत आओ। ये जनवरी 1969 की बात है, 11-12 जनवरी ऐसी कुछ। तुरंत ही ऑफिस से छुट्टी ली और बाय प्लेन ही मधुबन में आए। पहले कलकत्ता आए आसाम से, फिर दिल्ली, और दिल्ली के बाद फिर मधुबन। तो 17 जनवरी की सुबह बाबा के पास पहुंच गए। तो 17 जनवरी की सुबह बाबा के पास, तो 17 और 18 जनवरी बाबा की जो कर्मातीत अवस्था, जिसमें ये तीनों बातें ही निहित हैं। तीनों शब्द कौन से? निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी। क्योंकि बाबा की तो कर्मातीत बाबा से मिलते आ रहे थे 62 से, अनेक बार मिले। पहली बार कानपुर में ही मिले। वैसे उस रेफरेंस में एक बात बता दें कि जब पहली बार हम कानपुर में बाबा से मिले, क्योंकि लखनऊ में पढ़ते थे, लखनऊ से कानपुर पास होता है, सभी लखनऊ वाले कानपुर बाबा से मिलने ले गए। बाबा से पूछा, बाबा हमारा नंबर तो ऑलमोस्ट लास्ट में ही आया, क्योंकि पहले तो सब बुजुर्ग प्रवृत्ति वाले सब मिले, हम तब लगभग 16-17 साल के थे, तो लास्ट में करीब नंबर आया। तो बाबा के पास नंबर आया, बाबा ने कहा आओ बच्चे, बाबा तुम्हारा बहुत समय से इंतजार कर रहा था। तो देखो भगवान इंतजार करे, पहली बार शुरू में तो इतनी ज्यादा जागृति भी नहीं होती है कि इस तन में परमात्मा आते हैं, ऐसे भले थ्योरेटिकली सुना हो लेकिन उस चीज की अनुभूति वैसी नहीं होती है। तो इस कारण से हमने कहा कि हाँ बाबा, आने में लेट हो गई, थोड़ा कोहरा था, रोड भी खराब थी, हमने सोचा इस चीज के लिए बाबा कह रहा है कि बहुत समय से इंतजार कर रहा था, क्योंकि पहुंचना हमें सुबह 7-7:30 था और पहुंचे 9 बजे, तो इसीलिए बाबा लेट हो गए हम लोग। तो बाबा कहते अच्छा, बाबा ने कहा बहुत समय से बच्चे, बहुत क्लब पुराने वाले बच्चे हो ना, तो बहुत समय से बाबा इंतजार कर रहा। दादियों ने फिर स्पष्ट किया, क्लब के हम लोग बिछड़े हुए हैं, 5000 साल पहले बाबा से मिले हैं, उस रेफरेंस में बाबा कह रहा है। फिर उसके बाद बाबा ने नाम पूछा, तो एक्चुअली हमारा लौकिक नाम श्री है, श्री बोलते हैं ना, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, सिंगल सरनेम है, तो हमने बताया श्री। अब बाबा तो बहुत, मतलब इसीलिए तो वो विश्व महाराजन नंबर 1 बनते हैं, कि बाबा जो है ना, हर एक के साथ, बच्चे के साथ बच्चे जैसा, जवानों के साथ जवान जैसा, वृद्धों के साथ वृद्ध जैसा। तो बाबा ने पूछा कि जब बाबा से ना ये श्री नाम क्या बोला बच्चे, तो हमने फिर बताया श्री। ओ आओ दादी, गंगे दादी आओ, गंगे दादी कानपुर में, बाबा कानपुर गए हुए थे, दादी प्रकाशमणि और ये सब बाबा के साथ थे, तो आओ बच्चे, आओ आओ दादी, आज बाबा को एक बच्चा मिला जो बाबा से भी महान है। ऐसा हो सकता है क्या? हम तो ऐसा देखने लगे कि कहते हैं ना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़े, जैसे बाबा से पहली बार मिल रहे हैं, और बाबा तो बाबा, भगवान का रथ, और कहाँ हम सब लोग। तो इसीलिए तो बाबा ने कहा, देखो बच्चे, फिर बाबा ने बताया, बच्चे अभी इस कोई भी अपने नाम को श्री नहीं लगा सकता, क्योंकि श्री देवताओं को कहते हैं, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री सीता, श्री राम, जिनकी आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र। अभी न तो किसी की आत्मा पवित्र है, क्योंकि आदि से लेकर अंत तक जन्म लेते 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 सतो प्रधान से तमो प्रधान हो गई है, और न शरीर पवित्र, क्योंकि शरीर तो है ही विकारों की उत्पत्ति है। तो इसीलिए न शरीर पवित्र न आत्मा, तो ब्रह्म, यहाँ तक कि ब्रह्मा बाबा भी अपने नाम के आगे श्री जब नहीं लगा सकता, तो तुमने कैसे लगा लिया श्री है? तो हमने कहा कि बाबा ये तो लौकिक। तो बाबा ने कहा ठीक है, अभी तुम्हें श्री जैसा बनना है, देवता जैसा, बाबा आज से तुम्हारा नाम मोहन करता है। तो बाबा ने नाम भी बदल दिया मोहन, ये तो तब से अपना नाम भी ये हो गया। तो ये भी एक सौभाग्य है, क्योंकि पुरानी बातें सब भूल जाएं, बाबा ये चाहता है बच्चों को कि पुराना लौकिक माता पिता, भाई बहन, लौकिक संबंध, लौकिक दुनिया, ये सब विस्मृत हो जाए, और मेरा नया जन्म हुआ है, मेरा नाम ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी है। मेरे माता पिता ये ईश्वर बाबा, ब्रह्मा बाबा आदि आदि, पूरी जैसे कंप्लीट नवीनता आ जाए। तो बाबा ने आप सबका भी नाम बदला हुआ है, ब्रह्मा कुमार कुमारिया। तो इसीलिए पुरानी बात कोई भी याद न रहा, इसीलिए बाबा से जब मिलते थे ना, कई बार आओ बच्चे आओ, ऐसे बाबा हाथ कर देता था, और हम लोग बाबा के भावों में एकदम समा जाते थे। तो बस जाके, और ब्यूटी ये होती थी कि विदेही हो जाते थे, अशरीरी हो जाते थे, अशरीरी का ज्ञान नहीं होता था, लेकिन लौकिक में तो कहते हैं भूल जाते थे, जैसे बिल्कुल देह का भूल गए भान। उसके बाद थोड़ी देर बाबा की बाह में रहे, फिर बाबा, हाँ बच्चे आओ, मीठे बच्चे आओ, ऐसे प्यार से बाबा थपथपाता था। हम लोग जैसे फिर थोड़ा बहुत देह में खींचे, बाबा टोली खिलाता था, और बाबा इस प्रकार से टोली आदि खिला के बाबा फिर एक जाता था, दूसरा आता था, कोई बात पूछनी होती थी बाबा से पूछते थे। तो इस प्रकार से ये होता था। तो आप देखो कि ये इन तीनों शब्दों का बाबा से पहली बार से मिलने से, और जब तक साकार में हो, अव्यक्त हो, किसी भी रीति से मिलते रहते हैं, तो तीनों शब्दों का ये कनेक्शन डायरेक्ट ब्रह्मा बाबा से है। क्योंकि ब्रह्मा बाबा को हमने देखा लास्ट में, जब 17-18 जनवरी को मिले, तो हमेशा तो मिलते थे तो बाबा से कोई भी बात पूछनी होती थी पूछते थे, बाबा उत्तर देता था। लेकिन 17-18 जनवरी को तो बाबा ब्रह्मा बाबा कर्मातीत बन चुका था, तो इसीलिए ब्रह्मा बाबा के सम्मुख गए। तो बस बाबा ने दृष्टि दी और कहा, बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ये पूछ, ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा। यानी कि मुझे एक अक्षर बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ी, जो बाबा ने शायद कल परसों भी मुरली में बोला है ना, कि जब कर्मातीत अवस्था के निकट होते हैं तो दूसरे के दिल के भाव को जान जाते हैं, मन के भाव को जान जाता है। ये प्रैक्टिकल में हमने उन दो दिनों में देखा जो बाबा की कर्मातीत अवस्था को दर्शाता है। बस हम सब भी ब्रह्मचारी तो बन गए, ब्रह्माचारी बनना है, तो इसीलिए ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रख के हम आगे बढ़ना है। तो जैसे जैसे हम ये निराकारी स्थिति में आते जाएंगे, हमारा ये बढ़ता जाएगा, देही अभिमानी का भाव देहभान भूलता जाएगा, तो स्वतः ही ये वैसे पहला और आखिरी भी है, क्योंकि तीनों एक दूसरे से ओतप्रोत है। निर्विकारी जब से ज्ञान में आते हैं तो सबसे पहले तो स्थूल विकारी छोड़ते हैं, फिर निर्विकारी, फिर वाचा पे और ज्यादा कंट्रोल होता जाता है, और लास्ट में फिर मनसा पे निराकारी। तो ये इस कर्मातीत अवस्था में जाने के लिए ये रिवर्स ऑर्डर की आवश्यकता है। तो ये रिवर्स ऑर्डर माने कर्मणा, वाचा और फिर मनसा। तो ये तीनों बातें हैं, जितनी होती जाती हैं, तो एक बाबा में ये देखा। हम सबको भी कर्मातीत बनना है, तो हमारे सामने भी जब लोग आएंगे, बस किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनके दृष्टि दी हमने, उनके मन के भाव को जाना, उसका उत्तर दिया, समाधान किया, और बस वो आत्मा बड़ी संतुष्ट होके चली जाएगी। और इसीलिए बाबा ने कहा, बस अशांत आत्मा आए, बस आपका देरा, चाल चलन और चेहरा, इन तीन भावों से वो आत्मा संतुष्ट होके चली जाएगी। तो एक तो ये बाबा का देखा कर्मातीत में लास्ट में, क्योंकि ये तीनों बातें प्रैक्टिकल बाबा में देखी, तो मैं प्रैक्टिकल बात बताना चाहता हूँ, थ्योरेटिकल तो सुनते ही रहते हैं। एक ये कि मन के भाव को बाबा ने बिना कहे समझ लिया, एक अक्षर भी नहीं बोला, एक बार दो बार नहीं, बल्कि कुल मिला के लगभग 6-7 बार दो दिन में ऐसा हुआ। बाबा के सम्मुख गए, बाबा ने मन के भाव को परख करके तुरंत उसका समाधान कर दिया। दूसरा, जब आत्मा कर्मातीत अवस्था के एकदम निकट होती है ना, तो वो आत्मा जो है वो हर आत्मा के मन के भाव को जान करके उसका समाधान कर देती है। तो ये तो प्रैक्टिकल देखा। 18 जनवरी को बाबा ने सुबह मुरली नहीं चलाई थी, बाबा ने कहा आज बाबा रात को मुरली चलाएगा, सब भोजन करके आना। तो समय तो आपका 11:30 हो रहा है, और 11:30 पर रात्रि क्लास, मतलब रात्रि क्लास क्या, दूसरी क्लास होगी। लेकिन मैं बाबा की ये दो बातें हैं जो अंतिम दिन देखी, ये हम सब की कर्मातीत अवस्था से लगती हुई है, तो ये बता के पूरा करता हूँ। तो दूसरा ये देखा कि जब हमें भी ना, केवल ऐसे नहीं शरीर छोड़ना है, छोड़ना तो है ही है, लेकिन ब्यूटी क्या है, ब्रह्मा बाबा की तरह हमें भी शरीर छोड़ने का आभास पहले से हो जाएगा। बस बाबा अब मैं आपके पास आया कि आया, जैसे ब्रह्मा बाबा को पहले हो गया था तो कई बातों से लगता था। बाबा ने कहा बच्ची यीशु दादी को सारी चिट्ठियां के उत्तर लिखवा लो, उत्तर लिखवा लिए, कई काम बाबा के बचे हुए थे, नक्की लेक का जो म्यूजियम है वो बिल्डिंग लेने की बाकी थी, बहुत दिनों से पड़ी हुई थी, बाबा ने लास्ट डे ही फाइल पर साइन किया। कोई भी काम पेंडिंग नहीं रहेगा, पेंडिंग रह गया यानी बचा हुआ रह गया, अगर मानो आपको किसी को कन्या को समर्पित करना है, मकान बाबा की सेवा में देना है, तन मन धन कुछ लगाना है, कुछ भी बात है, अगर अक्सर करके हम लोग बोलते चलो कल कर लेंगे ये काम, परसों कर लेंगे जिस दिन फुर्सत होगी, बस और उसी बीच में शरीर छूट गया तो वो बात, अंत समय ही वो आत्मा निकलने नहीं देगी। शरीर से आत्मा, शरीर भी पकड़े रहेगा आत्मा को, क्योंकि इस शरीर के साथ तो 50, 60, 70, 80, 90 जितने साल का साथ है, तो ये शरीर छोड़ेगा नहीं आत्मा को। तो इसीलिए अगर हम चाहते हैं आत्मा स्वतंत्र होके चली जाए, तो इसीलिए कोई भी काम पेंडिंग नहीं, बचा हुआ नहीं रहना चाहिए। चलो ये काम बाद में, बचा हुआ रहेगा तो अंत समय वो शरीर जो है आत्मा को खींचता रहेगा। तो वो भी काम लास्ट डे, उस दिन बाबा ने सुबह मुरली नहीं चलाई 18 जनवरी को, तो बाबा ने कहा बाबा आज रात को जल्दी मुरली चलाएगा, इसीलिए सब भोजन करके 8 बजे तक आ जाए क्लास में। रोज 8:45 क्लास होती थी, सब भोजन करके आए। भोजन करके ये खास बाबा ने बोला था, क्यों? क्योंकि अगर कोई शरीर छोड़ के जाता है, भोजन रखा भी हो बना हुआ, तो भी स्वीकार नहीं करते लोग। तो इस तरीके से बाबा ने वो बात को भी वो करा। तो हमें भी अंत समय सब लोगों के दिलों का हाल तब हम जान सकेंगे, वो हमारे भक्त तभी बनेंगे अंत में आत्मा। जैसे हम सब कहने के लिए ब्रह्मा बाबा के भक्त ही, क्योंकि कृष्ण की भक्ति तो हमने द्वापर युग से शुरू की और ये भक्ति करते करते ही समय निकल गया। तो इस कारण से अंतिम दिन हमने देखा बाबा ने मुरली चलाई, बाबा को ना एक बार भी खांसी आई, ना कफ साफ करने की जरूरत पड़ी। यानी कर्म भोग पर हम योग बल विजय प्राप्त कर लेगा, ये बाबा से पूछा भी था। तो हमारा पुरुषार्थ भी अभी यही होना चाहिए, कर्म भोग चाहे जितना भी हो, कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, बुखार है, ये है, जो कुछ है, लेकिन योग बल हम कंटिन्यू करें। और बाबा ने भी बताया था अंतिम दिन, मैंने इन दोनों में युद्ध चल रहा था, तो पहले कर्म भोग ज्यादा शक्तिशाली था, फिर मैं धीरे धीरे योग बल को शक्तिशाली करता चला गया और कर्म भोग पर विजय प्राप्त कर ली। तो ये जो बातें हैं, अल्टीमेट हमारा लक्ष्य है जो कर्मातीत बनने का है, इन तीन शब्दों का भावार्थ पूरा का पूरा कर्मातीत बनने पर ही है कि मंशा से हम निराकारी बन जाएं, वाणी पर भी इतना 100% कंट्रोल और कर्मों पर भी पूरा हो। तो इस तरीके से लास्ट में एक बात कि आत्मा को तो हम पवित्र बना रहे हैं, लेकिन शरीर को हमने कितना पवित्र बनाया, क्योंकि 5 तत्वों से बना शरीर है। तो इसीलिए प्रतिदिन हम बाबा ब्रह्मा बाबा की तरह 5 तत्वों को भी योग का दान दें, और ये योग का दान अगर नहीं देंगे तो ये शरीर और आत्मा दोनों एक दूसरे के साथ फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगी, दोनों एक दूसरे का साथ नहीं देंगे अगर, तो हम कर्मातीत नहीं बन सकते। तो इसीलिए ब्रह्मा बाबा का शरीर 18 की रात को छोड़ा, 18 की रात रखा रहा, 19 का रात, 20 का दिन, 21 को संस्कार किया गया, लेकिन बाबा का शरीर वैसा ही चमकता रहा, ना काला पड़ा, ना दुर्गंध आई, कोई इंजेक्शन वगैरह नहीं दिया, क्योंकि हम तो यहीं पर थे। और जब बाबा को स्नान वगैरह हम लोगों ने कराया, कपड़े वगैरह पहनाए अग्नि संस्कार से पहले, तो बाबा के शरीर में मतलब 100% तो नहीं, लेकिन काफी हद तक फ्लेक्सिबिलिटी, ये है तत्वों पर विजय। तो हम आत्मा को पवित्र बनाते हैं, तो इन 5 तत्वों को भी पवित्र बना करके हमें जाना है। इसके तो कई उदाहरण है, अभी समय हुआ इसलिए अंत समय के बाबा के इन बातों के ऊपर प्रैक्टिकल में हमने जो देखा वो ये करके हमें भी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है, और इससे तभी हम संपूर्ण होके वापस जाएंगे और तीनों शब्दों के अर्थ में स्थित होंगे, रियल सेंस में उन शब्दों पर विजय प्राप्त करते हुए हम अंतिम अवस्था को प्राप्त करें। ओम शांति, ओम शांति।
का अनुभव बड़ा निराला।